ऑफ कोर्स मेरा, मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने बच्चे को ट्रेन करूंगा यार। कोई कितना ही टैलेंटेड बिजनेसमैन हो, मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी देता हूँ, दे देता हूँ क्या कि यार ये फैक्ट्री तू संभाल, मेरे बेटे को मैं कुछ नहीं देता हूँ, क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं है। देन ऑफ कोर्स अगर तुम हार्डवर्क करते हो तो यू विल सी परफॉर्मेंसेस, यू हैव रणवीर एंड आलिया आल्सो।
एंड यू विल बॉलीवुड एंड फिल्म इंडस्ट्री और जिस इंडस्ट्री में, उसमें बहुत ज्यादा ऑफ स्क्रीन इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत ज्यादा कल्चर है।
ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। इंग्लिश लैंग्वेज पे लोग जज किए जाते हैं, वो है।
कौन सी ऐसी रिसेंट मूवी है जो आपको लगता है कि आप करते तो मजा आता?
आई थिंक अर्जुन रेड्डी कबीर सिंह।
आईटी में कैसा था डेटिंग कल्चर?
काफी बुरा सीन था यार, 1000 लोगों का बैच था हमारा और 70 लड़कियां थी।
1000 लड़कों में 70 लड़कियां। आपने बोला जबकि स्मॉल टाउन में आपने देखा ऐसा प्यार, तो क्या होता है
वो? बहुत ही वियर्ड रीजंस की तरफ से आता है। जैसे मुझे एक लड़की पे क्रश था क्योंकि वो एक दिन लेट आई, तो उसी वजह से मुझे उससे प्यार हो गया। जहाँ पे तुम्हें बचपन से ही बताया जाएगा ये लड़की है लड़का है, ये दोनों अलग हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही रीजंस मिलेंगे तुम्हें प्यार होने के, क्रश होने के।
लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए कि तुम लोगों को कैसे कैसे वियर्ड वे में क्रश हुआ, मेरे को देखनी अब स्टोरी। मेरे लिए बढ़िया फैन मोमेंट है वैसे, बताए मेरे को बहुत पसंद था कोटा फैक्ट्री एंड आपका कैरेक्टर, और ऑब्वियसली वो बहुत स्टीरियोटाइप हो चुका है, बट मैं आपको वैसे ही देखता हूँ जीतू भैया जैसे ही, ओके? तो सॉरी अगर मैं आपको वैसे ही ट्रीट करूँ तो। इनफैक्ट यू नो, मैं मूवी देखने गया था घर वालों के साथ, जहाँ पे पूरी फैमिली के साथ गया था, आयुष्मान और आपकी मूवी थी, ठीक है? तो वहाँ पे गया और मैं उसमें भी जीतू भैया ही देख पा रहा था, मैं नहीं देख रहा था कुछ और कैरेक्टर ही देख पा रहा
नहीं, लेकिन जीतू भैया से काफी अलग था यार, उसने एक लड़के को किस किया था।
ऑब्वियसली नहीं, बहुत बहुत डिफरेंट था, पूरा जोन अलग था, एक्टिंग भी अलग थी, बैकग्राउंड अलग था, पर यू नो जो चीज आप बहुत ज्यादा देख लेते हो एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो वो एक सिमिलैरिटी
जो कनेक्ट कर जाता है फिर तुम, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक मतलब इफ यू टॉक अबाउट अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, उनके जो पॉपुलर चीजें हुई हैं वो फिर डिस्कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ट्रू,
like you can't take away romance from Shahrukh, you can't take away that angry young man from Amitabh Bachchan.
Quick question, do you, कौन सी ऐसी recent time की movie है जो आपको लगता है कि as an actor आप करते तो मजा आता, challenging होता और वो which will be experimental, you don't know आप सही होते गलत होते वो सब अलग बात है, but ऐसे देख के लगा कि यार ये character मैं कर लेता और मैं फोड़ देता, या मुझे करना, अगर मुझे कोई challenge देता ये तो मुझे मजा आता।
मतलब रिसेंट टाइम या थोड़ा पिछले, या मतलब बिल्कुल अभी जो फिल्म आई उनमें से? तो नहीं,
मतलब चार पाँच साल
वाला। आई थिंक अर्जुन रेड्डी कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी का रीमेक कबीर सिंह थी,
कबीर सिंह एनिमल टाइप।
हाँ, नॉट एनिमल, लाइक द अर्जुन रेड्डी इज वेरी ऑथेंटिक कैरेक्टर आई फील, एंड इट इज़ डन, मतलब बहुत अच्छे से किया है। मतलब आई थिंक शाहिद ने भी कबीर सिंह में बहुत अच्छा किया है, एंड आई लव That character.
अर्जुन रेड्डी विद विजय देवरकोंडा।
हाँ, विजय ने बहुत अच्छा किया है, तो मतलब मुझे लगता है कि वो वाला ऐसा कैरेक्टर है जो शायद मैं करता, पता नहीं हो कैसा जाता, बट
क्या बात कर रहे हो यार, आप जीतू भैया हो यार, मत करो।
वो कैरेक्टर करने में शायद मुझे बहुत मजा आता, मेरे दिल का एक्टर बहुत खुश होता।
हाँ, मतलब मैं वैसे एक्सपेक्ट करता कि कबीर,
बहुत डेयरिंग रोल है वो, बहुत डेयरिंग रोल है, और जिस टाइम पे वो फिल्म आई उस टाइम पे मूवमेंट चल रही थी, और उस टाइम पे वो फिल्म करना बड़ा डेयरिंग है, बट दीज कैरेक्टर्स आई थिंक एग्जिस्ट इन आर सोसाइटी, एंड वो पोर्ट्रे करना रिस्पॉन्सिबली बहुत
डिफिकल्ट। देखा आपने ऐसे कैरेक्टर रियलिटी में?
हाँ, मतलब देखे हैं मैंने
कॉलेज में,
कॉलेज में नहीं बट आसपास देखे हैं अपने, मतलब जहाँ से मैं हूँ, हाँ दिख जाता कोई ऐसा पागल आशिक। हाँ,
कोई दोस्त सोच रहा है ऐसा?
नहीं, स्टोरी सुनने में आती है ना, बातें सुनने में आती है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, बंदी के लिए इतना पागल हो गया, या ठीक है अब इतना पागल होने के बाद भी बंदी को उससे प्यार है, तो ऐसी कहानियां सुनी है
छोटे शहरों में और ज्यादा सुनने में।
हाँ,
यू थिंक ये टीवीएफ में इनकी खासियत क्या है, क्यों टीवीएफ इतना चल रहता था, ऑलमोस्ट बैक टू बैक उनके सारे शोज बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को, एंड इनफैक्ट व्हाट आई आल्सो नोटिस्ड कि कुछ तो है जैसे एस्पिरेंस, कोटा फैक्ट्री, तो फटे, ये तो बहुत ज्यादा स्केल पे हो गए कि नेशनल लेवल पे हो गया, बट कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे भी शोज हैं लेकिन उनका कल्ट फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है। इट्स नॉट कि हाउ देर आर अदर मूवीज इन प्लेस, अच्छे चले तो बहुत बढ़िया, नहीं चले तो ठीक है यार, था अच्छा था। इनके जो नहीं चले, जो मतलब जो बहुत कम चले, उसकी भी एक बहुत स्ट्रांग कल्ट स्मॉल ऑडियंस होती है, तो व्हाट डू यू फील कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा बनता है?
आई थिंक अभी का मुझे नहीं पता, बट हाँ जब हम लोग थे टीवीएफ में तो उस टाइम पे जो जिन्होंने स्टार्ट किया, तीन लोग बिस्सो गोलू अरुणाब, इन तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया, उसके बाद बाकी लोग जुड़े, निधि समीर मैं दीपक कुमार मिश्रा आनंदेश्वर द्विवेदी वैभव बंधु, ठीक है, ये 8-9 लोग स्टार्ट में थे और इन्होंने आगे लेके गए, उसके बाद 25 लोग हुए। तो ये जो 25 लोग थे जो फर्स्ट जनरेशन थी, इनकी सबसे खास बात ये थी कि अनट्रेंड लोग थे, उठ के कहीं से उठ के हाँ हमको फिल्में बनानी है, कैसे बनानी है नहीं पता, तो इनको पता ही नहीं है कि कैसे फिल्में बनानी है, तो बहुत ही बेसिक्स पे, बेसिक्स से स्टार्ट किया, बेसिक इन टर्म्स ऑफ बेसिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग, कि एक कैमरा होना चाहिए, एक क्लोजअप निकालेंगे, एक वाइड लेंगे और ठीक है, मतलब अच्छी राइटिंग करेंगे, मतलब राइटिंग करेंगे और एक्टिंग करेंगे, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया अनट्रेंड लोगों ने। जिस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे जो फिल्में थी या उस टाइम पे जो भी एंटरटेनमेंट कंटेंट अवेलेबल था, उसमें बेसिक्स मिसिंग था, वो कहीं बेसिक से लेयर हो के इतना सरफेस लेवल पे चीजें हो रही थी उस टाइम पे, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ कोर्स,
बेसिक मतलब रियलिटी से दूर था।
हाँ मतलब बेसिक मतलब कि बेसिक मतलब राइटिंग ही अच्छी नहीं है, राइटिंग इज नॉट कनेक्टिंग पीपल,
ओके रिलेटेबल नहीं राइटिंग, हाँ, काफी ऊपर की
वो बिजार जा चुकी है कि अच्छा ये चलता है तो सुपरस्टार को लेके आ जाएंगे, हम लोग देख रहे थे कि हाँ हम लोग बस इंस्पायर्ड थे कि अच्छा फॉरेन में कुछ शूट, गाना शूट करके दिखा दिया, हमने कभी देखा नहीं फॉरेन, और उसमें कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है, जस्ट लोकेशन देख के हम एक्चुअली पसंद कर रहे हैं उस चीज को, और उस वजह से पैसा बना रही है, फिल्में हिट हो रही हैं, बट देर वॉज नो कनेक्टिविटी, वी वर गेटिंग इमोशनल बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू फ्यू स्टार्स, लाइक शाहरुख खान से हम लोग बहुत कनेक्टेड हैं, तो अगर वो स्क्रीन पे रो रहे हैं या उनके साथ स्क्रीन पे कुछ गलत हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं फील कर जाएंगे, दैट वॉज द ओनली थिंग, देर वॉज नो राइटिंग, मतलब बेसिक्स बहुत मिसिंग थे, एक्सेप्ट फ्यू, लाइक इफ यू टॉक अबाउट इन दोस टाइम, इफ यू टॉक अबाउट अनुराग कश्यप, ठीक है, एंड दिबाकर बैनर्जी, ठीक है, उस टाइम पे जोया, सो दीज वर फ्यू हु वर लाइक कनेक्टेड टू बेसिक्स, उसके अलावा उस लेवल पे कमर्शियल लेवल पे कोई बेसिक्स किसी के अच्छे नहीं थे, मिसिंग हो रहा था उस टाइम पे, अनट्रेंड लोग आए 10 लोग और जिन्होंने बहुत ही बेसिक से काम करना चालू किया, वो कनेक्ट कर गया लोगों को, वो एक बहुत बड़ा रीजन था।
एंड हाउ वाज जादूगर फॉर यू? मेरे को देखना था, मैं देख नहीं पाया क्योंकि, और मुझे इसलिए देखना था जादूगर क्योंकि मेरा मतलब मेरे डैड बिजनेस चलाते हैं, मेरे डैड का जो बिजनेस है उनका डिटर्जेंट का नाम जादूगर है।
Nice.
तो मुझे देखना था कि जादूगर के बारे में कैसे देखूं, एंड मैं पूरे टाइम उस टाइम पे इसको मेरे को देखना इसलिए था कि अगर इसका कोई पार्ट टू पार्ट थी आएगा तो कोई इंटीग्रेशन हो सकता है क्या, कुछ कर सकती है, मैं तो उस मार्केटिंग एंगल से था बट मैं देख नहीं पाया। हाउ वाज जादूगर फॉर यू? और जादूगर नाम कैसा आया?
आई थिंक जादूगर नाम तो आई थिंक फिल्म में कैरेक्टर मतलब कुछ जादू से रिलेटेड है, मतलब इट्स वेरी फैंटेसी गाय जो बिलीव करता है कि हाँ उसको बहुत अच्छा जादूगर है, ऑल दो वो होता नहीं है बट बिलीव करता है कि वो बहुत बड़ा जादूगर है, एंड हाँ इन द क्लाइमैक्स सम मैजिकली समथिंग हैपेंस, जो कि एक ट्रिक होती है और जो ट्रिक एग्जिस्ट करती है जिसमें तुम मेसमराइज हो जाते हो और भूल जाते हो कि तुम कौन हो कहाँ हो मोमेंट के लिए, मतलब ऐसे ट्रिक्स होते हैं तो वो एग्जिस्ट भी करती है, तो वो ट्रिक यूज करके वो फाइनली फुटबॉल का गोल करता है, तो आई थिंक इस वजह से जादूगर परफेक्ट फिट बैठा नाम उस फिल्म के लिए। आई थिंक हर एक एक्टर का एक जोन होता है कि हाँ मतलब अगर वो रोमांस या रोमांटिक फिल्म करने जाएगा तो वो क्या जोन होगा, तो आई थिंक मेरे लिए जादूगर इज दैट जोन, दैट स्पेस, कि अगर मेरे तरह का रोमांस है तो वो ये वो इस तरह से होगा, तो उसमें जो दिशा और उसके सीन्स हैं जो एक, तो वो काफ़ी काफ़ी मेरा स्पेस, तो वो फिल्म मुझे काफ़ी टाइम से करनी थी इस तरह की स्क्रिप्ट, कि हाँ यार जिस तरह का मैंने रोमांस देखा है स्मॉल टाउन में, कि अरे इस तरह से भी एक तरह का प्यार एग्जिस्ट करता है जिसको लार्जर देन लाइफ भी ट्रीट कर सकते हो, बट वो कहीं ना कहीं रियल भी है, मतलब कहीं ना कहीं वैसा होता है, ठीक है, कि तुम अपनी दुनिया में खोए हुए हो, एक लड़की को देख लिया तो बस उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है और तुम पागल हो जाते हो, सो वो एग्जिस्ट करता है, तो वो उसका एक लार्जर देन लाइफ डिपिक्शन था इन जादूगर।
बताओ मुझे बचपन में ऐसे हुआ है आपके साथ?
हाँ हाँ ऑफ कोर्स यार,
क्या देखा है, लाइक क्या, गिव मी एन आइडिया ऑफ, कि आपने बोला जब कि स्मॉल टाउन में आपने देखा ऐसा प्यार, तो क्या होता है वो, गिव मी सम,
नहीं कुछ भी यार, मतलब
इंसिडेंट बताओ कोई ऐसा कि कहाँ पे ऐसे आपने देखा और कहाँ से इंस्पिरेशन पकड़ी, या आपके खुद का कोई स्टोरी हो?
नहीं, वो बहुत ही वियर्ड रीजंस की तरफ से आता है। जैसे मुझे एक लड़की पे क्रश था क्योंकि वो एक दिन लेट आई और वो एंटर की और पता नहीं उस दिन टीचर का मूड खराब था, तो टीचर ने उसको बहुत गंदी तरह झाड़ दिया, ठीक है, बहुत डांट दिया उसको और बहुत दुखी हो गई। तो उसको लगा यार, मुझे ऐसा लगता रहा यार इसको इतना नहीं डांटना चाहिए था, इतना नहीं डर क्या, मैं होता तो, क्योंकि मैं टॉपर था उस टाइम पे, तो अगर मैं आता तो शायद टीचर शायद मुझे उतना नहीं डांटता, बट मुझे लगा कि यार इसको इतना नहीं डांटना चाहिए था। तो वो अपने आप एक दो दिन में वो क्रश बन गया कि अरे यार इसको उस दिन कितना भाई कितनी बेइज्जती होगी इसकी क्लास में, वैसा मैं फील कर रहा था कि यार इतना नहीं डांटना चाहिए था। तो उसी वजह से मुझे उससे प्यार हो गया और वो क्रश चला काफ़ी टाइम तक, और मैं मतलब हाँ उसी नज़रों से देखता था कि हाँ ये लाइफ का प्यार है, और ठीक है सिर्फ इस वजह से प्यार हुआ क्योंकि
भाई सही
तो बहुत अलग रीजंस होते हैं। तो सो हाँ ये रीजंस शायद वहीं मिल सकते हैं ये जहाँ पे कोएड स्कूल्स कम होते हैं, बॉयज स्कूल ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स को अलग रखा जाता है, गर्ल्स के सेक्शन अलग होते हैं, तो वहीं पे ऐसे वियर्ड रीजंस हो सकते हैं तुम्हारे क्रश होने के। अदरवाइज तुम बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, फिर तुम्हें तुम्हारी कोई अच्छी केमिस्ट्री बनती है तुम्हारी बातों में, दैट्स हाउ यू फॉल इन लव, ठीक है वैसा होता है, ठीक है। बट अगर तुम उस जहाँ पे तुम्हें इतना रिस्ट्रिक्ट होकर रखा जाएगा, जहाँ पे तुम्हें बचपन से ही बताया जाएगा ये लड़की है लड़का है ये दोनों अलग हैं, इनके स्कूल्स अलग हैं, इनके सेक्शन अलग हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे ही रीजंस मिलेंगे तुम्हें प्यार होने के, क्रश होने के। एक मेरा दोस्त लाइक ये तो कॉलेज के टाइम पे हुआ है, मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उसको आज तक एक लड़की से प्यार है क्योंकि हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और वही वो नया नया लैपटॉप लेके आ रही थी, उसका ट्रेन में लैपटॉप चोरी हो गया ऑन द डे,
ओके,
और ऑफ कोर्स उसको बुरा लगा, वो रोने होने लगी। हम सुबह सब 10 लोग जाते थे जयपुर से कोलकाता की ट्रेन होती थी, आईआईटी खड़गपुर के लिए निकलते थे, तो जयपुर से हावड़ा एक्सप्रेस जाती थी, तो जयपुर के कुछ 10-12 लोग थे, उसमें वो लड़की भी थी, तो उसने लैपटॉप लेके आई थी नया दिवाली वाले ब्रेक पे और सब लोग हैप्पी थे, और उसका बीच कहीं चोरी हो गया आधे रास्ते में, और नेक्स्ट डे उठे तो वो रो रही थी इस बंदे को क्रश हो गया, आज तक प्यार है उस लड़की से,
नहीं
आज तक मूव ऑन नहीं कर पाया वो।
सच्ची में सही है यार,
तो ऐसे होता है।
मेरे को लगा लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए कि तुम लोगों को कैसे कैसे वियर्ड वे में क्रश हुआ, मेरे को देखनी अब स्टोरी कि हम अकेले ही तो दो नहीं है बगले से जो अपनी दुनिया में रह रहे हैं। आई वांट टू सी कि और भी लोग हैं अग्री करते हैं और क्या क्या उनकी स्टोरी थे। बट कमिंग ऑन कि इंडिया में ना ऐसा कल्चर भी नहीं है, डेटिंग कल्चर, हाउ अमेरिका में यूके में वहां पे प्रॉम नाइट्स होती है, 6th क्लास से प्रॉम नाइट स्टार्ट हो जाती है, वेयर द होल कल्चर इज माँ बाप सब लोग पुश करते हैं अपने बेटे को अपनी बेटी को कि जाओ अपना डेट, इक्वली लड़कियों को भी कि जाओ किसी अच्छे लड़के को पूछो डेट पे लेके जाओ, या वेट किसी तुम्हारा कोई फ्रेंड है क्या, गिव हिम सम हिंट्स कि जहाँ पे, तो वो एनुअल एक ट्रेडिशन हो जाता है जहाँ पे आगे बढ़ के लड़कों को बात करनी होती है, डांस नाइट पे लेके जाना होता है, फ्लावर लेके जाना होता है, एंड देन वो धीरे धीरे कल्चर बन जाता है वेर यू हैव टू गो एंड टॉक टू अदर पर्सन और फिर तुम्हारे क्रशेस बनते हैं।
ये बहुत अच्छा है यार, ये तो जरूरी है।
हाँ, मतलब अपने इधर कुछ भी नहीं होता।
ये सही तरीका है ना, मतलब उसके अदरवाइज फिर वियर्ड तरीके होंगे।
एग्जैक्टली
सब कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं होगा, फिर उसमें चीजें गलत भी होंगी सही भी होंगी, फिर वो तुम सही करने जाओगे गलत चीजों को, तो वो बहुत टाइम टेकिंग है और मतलब उसमें वियर्ड चीजें हो सकती हैं, रादर यू बी ओपन अबाउट इट और उस तरह से चीजें सिस्टम में लेके आ जाओ कि हाँ ये जरूरी है, उसको कल्चर में लेके आ जाओ, उसको सेलिब्रेट करो, उसको फेस्टिव बना दो, वैलेंटाइंस डे बना दो, मतलब यू नो उस दिन सब लोग जाएंगे, सो वो चीजें जरूरी हैं, जैसे वो यहाँ पे कभी है नहीं
अभी तक तो।
हाँ
अभी तक
तो अरेंज वाला सेटअप था कि हाँ।
आईटी में कैसा था डेटिंग कल्चर? लड़कियां कम होती होगी ना आईआईटी में, तो ये जोक है।
हाँ, ongoing. मतलब काफी बुरा सीन था यार, मतलब आईआईटी में तो लाइक हम लोग कितना 1000 लोगों का बैच था हमारा और 70 लड़कियां थी,
1000 लड़कों में 70 लड़कियां।
साइलेंस सेज
ओके। आपकी गर्लफ्रेंड थी आईआईटी में?
नहीं नहीं, मैंने बहुत कोशिश की बट कोई नहीं होना।
तो 1000 में आप भी लाइन में ही थे। आप मतलब कौन सी कैटेगरी में थे? देयर थ्री टाइप्स ऑफ 1000 में से नॉन डेटिंग वाले लड़के, एक जिनके ऊपर 70 की लड़कियां भी 70 लड़कियां भी उन्हीं पे मर रही है।
हाँ, आई वाज फुली इंस्पायर्ड बाय शाहरुख स्टोरीज, शाहरुख सर की जो फिल्में होती थी उन स्टोरीज से मैं इंस्पायर्ड था, मैं प्रॉपर रोमांटिक हरकतें करता था, फटाने की कोशिश करता था और बट नहीं बात बनी, बट मैं था हाँ फुल रोमांटिक वाले स्पेस में था, बट मैं उस वाले, कुछ लोग उस वाले स्पेस में जाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होना, मतलब कैसे होगा, तो अपन और चीजों पे फोकस करते हैं और बाकी चीजें करते हैं और पूरा ध्यान उसी पे लगाते हैं, बाद में सोचेंगे, चार साल बाद जब बाहर निकलेंगे तो तुम एक एक अलग इवॉल्व्ड पर्सनालिटी होगे, तुम्हें बहुत सारी चीजें पता होंगी, देन यू विल फाइंड थिंग्स, तुम इस चीज पे फोकस कर पाओगे ज्यादा। और कुछ लोग की बन जाती थी जो 70 लोग होते थे लकी 70, तो उन लोगों की बन जाती थी, बाकी लोग आई थिंक फेस्ट का वेट करते थे कि कब
बाहर की लड़कियां,
हाँ कब कल्चरल फेस्ट आएगा और कब ये मौका मिलेगा कि बाहर की लड़कियां आएंगी और कब इंस्टी भरेगा लड़कियों से, एंड तो फेस्ट में बहुत अग्रेसिव होते थे कि कुछ भी करके इंप्रेस कर लें, तो सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट कर रहे हैं और ठीक है कहीं से भी कुछ अप्रिशिएशन मिल जाए, बाद में ऑर्कुट पे या फेसबुक पे कनेक्ट होंगे, तो वैसी चीज़ें बहुत होती थी।
तो आपने आपने कोई डेट किया कॉलेज टाइम में कि नहीं डेट ही नहीं है, फेस्ट में ही बात बनी आपकी नहीं हुई?
फेस्ट पे मैंने ट्राई किया है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत रोमांटिक
बताओ इंटरेस्टिंग रोमांटिक कहानी।
आई थिंक हाँ मतलब फेस्ट चल रहा था और एक लड़की फेस्ट सुना था कि सीनियर से कि अरे फेस्ट में स्कोप होता है अगर ठीक से अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे चीज़ों में और मचाओगे तो सीन बन सकता है, तो वैसा पता था। फेस्ट निकल गया पूरा, तीन दिन का, चार दिन का फेस्ट, चार दिन निकल गया, सब लोग बैठे हुए थे थक के हार के, कुछ नहीं हुआ, 10 का ग्रुप था, किसी का कुछ नहीं हुआ, बैठे हुए सडनली एक लड़की आई एंड उसने मैं कॉर्नर पे बैठा हुआ था, वो क्रॉस की एंड उसने मुझसे कुछ तो रास्ता पूछा, तो पता नहीं मतलब वो देखा और एक नज़र में जो प्यार होता है वो हुआ, ठीक है, मतलब लिटरली वो वैसे वाला
दिख रहा है शाहरुख खान,
हाँ,
okay.
कि हाँ कि फ्लावर्स
वायलिन सब बज गए पीछे,
सब बज गए एंड मैंने बोला या आइए मैं दिखा देता हूँ बोला कि नहीं तुम सिर्फ मुझे रास्ता बता दो मैं पहुंच जाऊंगी तो मैंने बोला, फिर मैंने बोला कि नहीं मैं उसी साइड जा रहा था तो इफ यू डोंट माइंड, तो सब बोला चलो ठीक है, तो उसको फाइनली मैंने थोड़ी बहुत बात हुई, मैंने उसका नाम पूछा, उसने मेरा नाम पूछा एंड मतलब तीन चार बातें हुई पूरे रास्ते में और उसका हॉस्टल आ गया, मैंने उसको बता दिया कि वो बाहर की थी, वो उस वहाँ पे रुकी हुई थी, गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी, तो मैंने बोला कि ये गेस्ट हाउस है, सामने से ये सारे दोस्त आ रहे थे, उन्होंने देखा तो वही उनको लगा कि ओ
जी दोस्तों
रेड कपल उनको लगा कि यहाँ सॉर्टेड होगी लौंडे की लाइफ, फिर उन्होंने आगे पूछा कि अच्छा हाँ फोन नंबर, मैंने बोला फोन नंबर तो नहीं लिया, बोला वे यार जो उनका डिसअपॉइंटमेंट था उस टाइम पे कि यार कैसा पागल है, एंड मतलब सब लोग थके हुए थे, अगले दिन से क्लासेस शुरू होने वाली थी, सारे 8 लोग चले गए अपने हॉस्टल्स और एक फ्रेंड बस बैठा और मैं बैठ गया एक्चुअली माथा पकड़ के कि यार ये कितना बड़ा चुतिया पा गया कि फ़ोन नंबर नहीं लिया यार, सब कुछ तीन चार बातें की मतलब फ़ोन नंबर तो ले ही सकता था यार, फिर बैठे एंड सडनली वो वापस से क्रॉस की, वो बाहर निकल गया, उसने हाई किया और उसने पूछा कि यहाँ पे क्यों बैठे हो, मैंने बोला ऐसे ही तो उसने बोला कि अच्छा चलो वॉक पे चलो, तो फिर पूरी रात भर मैंने उसके साथ ऐसा
घूमते रहे
चक्कर लगते रहे जैसा चक्कर लगते रहे एंड मेरे साथ एक घटना हुई थी कि मैंने कॉलेज में जाते ही एक सीनियर पे क्रश आया था और उनको प्रपोज कर दिया था और मेरी बहुत वाट लगा दी थी सीनियर्स ने, ठीक है, देन तो जैसे ही फ़ोन नंबर जब वो लग गए तीन चार चक्कर तो मैंने पूछा कि हाँ मतलब मेरा वो मोमेंट आ रहा था कि मैं फ़ोन नंबर लूँगा, उससे पहले बस मैंने एक चेक कर लिया कि मैंने पूछा आप कौन से ईयर हो, तो उसने बोला फाइनल ईयर हूँ और मैं फर्स्ट ईयर था मुझे लगा कि नो सीनियर नहीं यार वापस से सेम ट्रैप में नहीं फंसना है, और मैं बस सीधा जैसे ही मैंने फाइनल ईयर सुना मैं वहां से टर्न करके अपने घर आ गया बाय बोल के और मैंने फोन नंबर नहीं लिया।
यू नो एक मतलब एज एन आउटसाइडर इट्स मोर डिफिकल्ट कि अगर आप बाहर से आते हो और एक्टिंग वर्ल्ड से नहीं आते हो तो ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्या टू क्रैक एंड गेट इन टू दिस एक्टिंग गेट रोल्स राइटिंग एंड एक्चुअली बिल्ड अ ग्रैंड इमेज ऑफ अ स्टार एंड आई विल टेल यू वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। मेरी दो दोस्त हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, एक स्टार किड है और एक नॉन स्टार किड है, दोनों को एक्टिंग करियर बहुत अर्ली ऑन स्टार्ट हो गया, ठीक है, दोनों ने लीड मूवीज करी है, ठीक, दोनों ने बड़े बड़े एक्टर्स के सामने मतलब दे वर द लीड फीमेल एक्टर्स इन फ्रंट ऑफ लार्ज बॉलीवुड स्टार्स राइट, और सेम टाइप की मूवीज और सेम इम्पॉर्टेंट लेस इम्पॉर्टेंट वैसे ही रोल्स करें राइट, बट एक की मीडिया में जो पूरी इमेज है, स्टोरी है, पोर्ट्रे, उसको ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत मेन स्टार है वर्सेस जो नॉन फैमिली बैकग्राउंड है, नॉन बॉलीवुड उससे आई है, उसको इतना उसकी पोजिशनिंग नहीं होती, ज़्यादा एक्साइट नहीं होते लोग उसको देख के, उसको इतना बड़ा स्टार नहीं मानते लोग, बोलते हैं हाँ है स्टार है क्यूट, लाइक आई गिव यू, बस वो एक कॉन्टेंट क्रिएटर जैसे देखी जाती है कि शी इज एज गुड एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, वर्सेज जो एक दूसरे को देखा जाता है उसको ऐसा देखा जाता है कि यार ये तो मतलब क्या भगवान सोना चांदी दिए होंगे इसमें, राइट? यू नो हाउ व्हाट आई डिड, यू गेट व्हाट आई मीन, राइट? क्योंकि एंड व्हेन आई आस्क बोथ ऑफ देम कि क्या प्रोसेस है, कैसा है, तो जो स्टार किड है उसको जब फर्स्ट मूवी साइन करी, उसके बाद 9-10 months उसको रोज ट्रेनिंग मिलती थी और उसके अराउंड पूरी लाइक उसके आसपास पूरी लाइफ बन रही थी कि वो कहाँ पे देखी जाएगी, किन लोगों के साथ घूमेगी, कौन सी ऐड करेगी, कब वो मीडिया में आएगी, कितनी बात करेगी, उसको क्या बोलना है, उसको बहुत ट्रेनिंग, बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया, बहुत स्ट्रेटेजिकली लोगों के साथ घुमाया गया, बहुत स्ट्रेटेजिकली एक अवार्ड फंक्शन में भेजा गया, वर्सेस जो एक नॉन बॉलीवुड फैमिली से आई थी उसको ये सब कुछ भी नहीं था, उसको सिर्फ एक्टिंग वर्कशॉप्स दी गई और एक्टिंग वर्कशॉप्स के साथ जो मूवी के लिए ज़रूरत थी वो करके मूवी ख़त्म हो गई, मूवी के प्रमोशंस में थी और उसके बाद ख़त्म। सो ये हर किसी के साथ होता है,
हाँ ये नेचर ऑफ लाइफ है, इसका लाइफ है, इसका तुम क्या करोगे इसको तुम कैसे सॉर्ट करोगे? नहीं नहीं मैं, मुझे लगता है कि मेरे लिए तो मैं लकी रहा कि ये चीज़ वर्क कर गई, और क्योंकि मेरे लिए इंजीनियरिंग नहीं वर्क करती, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे लिए वो ज़्यादा टफर टास्क था कि वहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना, ठीक है, मैं एक IIT से हूँ, मैंने मेहनत की IIT में जाने के लिए, उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग ख़राब है, मैंने इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं की, मैं इंजीनियर बन गया बट एक परसेप्शन है ओ ये तो IIT से है, और एक कोई लड़का जिसने अच्छी इंजीनियरिंग की होगी बट उसका कॉलेज उतना रेप्यूटेड नहीं है, उसका कॉलेज एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉलेज है या स्टेट लेवल का कॉलेज है, तो उसको बट वो प्रिविलेज मेरे को जॉब तक ही है, मेरे को पहली जॉब बहुत ईजी होगी, मेरा पहला पैकेज बहुत ज़्यादा होगा, बट अगर मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ और मैंने वो विथ टाइम डेवलप नहीं किया, और जो बंदा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, जिसका कॉलेज ख़राब था बट वो अच्छा इंजीनियर है, ही विल प्रोग्रेस मोर विथ टाइम, उसको टाइम लगेगा बट हाँ मेरे को पहली जॉब ही अच्छी मिल गई, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं अगर इंजीनियरिंग वाली चीज़ें अपनी ब्रशअप नहीं कर रहा हूँ मैं वहीं का वहीं रह जाऊँगा। ऑफकोर्स पहला चांस मुझे मिला, मुझे पहला पैकेज अच्छा मिला, मैं ऑफिस में गया, लोग थोड़ा ओ में हैं कि अरे भाई IIT का लड़का है ये जो बोलेगा इस परसेप्शन पे ये सब सही है, ठीक है तुम अगर कोई ऑफिस की पार्टी हो रही है तो ओ IIT सब चुप हो जाएंगे, सब तुम्हारा सुनने का वेट करेंगे, ठीक है यू आर द स्टार इन द कंपनी, बट आफ्टर अ पॉइंट दे विल नो दैट यू आर नोवेयर, लाइक यू डोंट नो वॉट इंजीनियरिंग इज, ठीक है यू कांट फिनिश वन टास्क प्रॉपरली, और वो मैंने रियलाइज़ किया, मतलब मैं यहाँ बॉम्बे आया 3 महीने के बाद मैं 9 महीने बैंगलोर में जॉब करने गया, मुझे लगा कि ये मेरा प्रिविलेज है बिकॉज मैंने कभी किसी ज़माने में 2 साल मेहनत करके IIT में चला गया, ये मैं मेरा प्रिविलेज है कि मैं यहाँ इस इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, मुझसे बेटर ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन एक वो ड्राफ्टमैन इंजीनियर भी नहीं होता है, उस ड्राफ्टमैन को मुझसे ज़्यादा पता है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई कैसे करना है क्या करना है, मैं उसका लीडर हूँ, मेरे 8 लोगों की टीम में मैं पूछ ही कर रहा हूँ कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, अच्छा ये मैप बनाया था यार इसका मतलब क्या है, इस साइन का मतलब क्या है, तुम समझ रहे हो, और कोई अगर मतलब और वो पता चल जाता है 1 साल में पता चल जाता है कि हाँ जो दूसरे कॉलेज के इंजीनियर ने ज्वाइन किया है उसने इंजीनियरिंग अच्छे से की है तो वो अच्छा इंजीनियर है, या तो मैं इंप्रूव करूँ अब अपनी इंजीनियरिंग बैठ के वापस से 4 साल की पढ़ाई शुरू करूँ, और मैं अपनी वो एक तरीका है वो करना ही पड़ेगा, तो अगर तुम्हें परफॉर्म करना है अच्छा तो चाहे तुम कितने भी प्रिविलेज हो, चाहे तुम्हें पहले चांस मिल गया हो, तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हें वो कैरेक्टर लोगों तक पेनिट्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आफ्टर पॉइंट नहीं वर्क करेंगी चीज़ें, ठीक है चाहे तुम कितनी भी फिल्में करते रहो, तुम थ्रू आउट फिल्में करोगे बट इट वॉन्ट वर्क लाइक जिस तरह से शाहरुख खान की फिल्में वर्क करती हैं वो नहीं करेंगी, बट ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं है वो हर जगह है, तुम IIT में तुम ऑफकोर्स मैं अगर बिजनेसमैन हूँ मैंने बिजनेस खड़ा किया है मैं अपने बच्चे को ट्रेन करूंगा यार कि वो बिजनेस जाए, मैं किसी हाँ कि कोई कितना ही टैलेंटेड बिजनेसमैन हो मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी देता हूँ क्या कि यार ये फैक्ट्री तू संभाल मेरे बेटे को मैं कुछ नहीं देता हूँ क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि वो मतलब लायक नहीं है इसके, इसलिए तू बहुत टैलेंटेड है, तू आईएम से करके आया है, तुझे एमबीए का पता है, तू बहुत स्मार्ट है, तू मेरी प्रॉपर्टी ले ले, मैं साइन करता हूँ तू मेरी सारी फैक्ट्रीज ले ले, ऐसा होता है क्या? नहीं होता. सो एवरीबडी वॉन्ट्स कि अच्छा ये करना चाहते हैं, तो लेट्स ट्राई एंड वॉट इफ ही रियली मतलब ही और शी वर्क्स हार्ड टूवर्ड्स इट. एंड ऑफकोर्स अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो यू विल सी परफॉर्मेंसेज लाइक यू हैव रणवीर एंड आलिया आल्सो.
या
ठीक है, तो देयर इज नो क्वेश्चन की वो है हार्ड वर्क.
एक्टिंग आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? क्योंकि मैं बता रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैंने ये एक ब्रांड की पार्टी में देखा और मुझे तब बुरा लगा कि एक ही ब्रांड की पार्टी में दोनों को ऑलमोस्ट पैसे भी सेम मिल रहे हैं टू अपियर इन दैट इवेंट, बट एक का ऑरा कुछ ऐसा है कि जिसको तो उसको कंसिडर किया जाता है कि आप एक बड़ी ब्रांड मतलब. एंड आई वुड रेट एक्टिंग वाइज, इनफैक्ट जो नॉन बॉलीवुड फैमिली से उसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी.
नहीं मुझे लगता है कि
सी एक्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो एक्टर बन जाते हैं उनका तो है, लाइक टुडे व्हेन यू लुक एट आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स एंड यू जस्ट एवरी टाइम दे आर ऑन स्क्रीन यू फॉल इन लव विद देम कि भाई क्या करते हैं कोई भी रोल. मतलब रॉकी रानी भी आलिया भट्ट उतनी ही अपील करेगी तुम्हें जितना वो ये कौन सी मूवी करी थी, गंगूबाई में शील अपील और हाईवे में शील अपील. सो वो अलग लेवल है वेर यू बिकम एक्टर भी तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारा ऑरा भी बहुत बड़ा है, पब्लिक पर्सोना भी बहुत बड़ा है, तुम पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, वो अलग लेवल हो गया. स्टार्ट की
बात कर रहा हूँ, नहीं हम जिस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं वो कैसे बिल्ड होता है, वो बिल्ड होता है कि ऑडियंस है और तुमने ऑडियंस को किसी चीज अपने कॉन्टेंट से एंगेज किया. अब वो कॉन्टेंट क्या है? अब वो कॉन्टेंट है अच्छी परफॉर्मेंस मतलब डिलाइटफुल परफॉर्मेंस या फिर ऑरा. सो ये डिपेंड करता है कि ऑडियंस क्या टेस्ट आज देखने वाली है. आज ऑडियंस को टेस्ट चाहिए. अगर ऑडियंस तुमसे ऑरा एक्सपेक्ट कर रही है और तुमने ऑरा नहीं दिया, यू विल फेल.
नाइस आंसर.
अगर तुम मतलब अगर मिस्टर अमिताभ बच्चन से तुम ऑरा एक्सपेक्ट करने गए हो और वो ऑरा नहीं दिखा, तो नहीं देखनी यार एक्टिंग, तो हम देख लेंगे. और सेम चीज अगर तुमने एक्टर हो, तुम्हारी लोग परफॉर्मेंस में सिर्फ परफॉर्मेंस और एक्टिंग देखने आए, वहां तुमने ऑरा दिखा दिया, लोग पुट ऑफ होंगे.
True.
लोग बोलेंगे ये क्या है यार, ये प्लीज ये मत करो यार, यू डोंट नीड टू डू दिस.
True.
तुम जो हो वैसे रहो, तुम परफॉर्मर हो, तुम्हारी हम फैन हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस के, तुम्हारे ऑरा के फैन नहीं है.
या
ठीक है, सेम थिंग हैपन. और ये इसके लिए मतलब इसमें कोई जोन नहीं है कि नेपोटिज्म और वो सब कुछ नहीं है. शाहरुख खान इज नॉट
अ नेपो किड.
हाँ, बट उनका ऑरा देखने जाते हैं लोग.
यस, ऑरा ही देखने जाते हैं.
हाँ, कि हाँ क्या देखने को मिलेगा, क्या लार्जर देन लाइफ क्या देखने को मिल रहा है, वो देखने जा रहे हो तुम, तो वो मिसिंग होगा. परफॉर्मेंस हम कहीं और देख लेंगे. आप क्यों कर रहे हो? आप हमें पता है आप अच्छे एक्टर हो. आपको ये करने की जरूरत नहीं है. हमें आपसे ऑरा एक्सपेक्टेड है. तो एक्सपेक्टेशन गेम होता है. एक्सपेक्टेशन क्या है? और वो ऑडियंस है. ऑडियंस पैसा देके या अपना टाइम देके वहां पे आ रही है.
यस,
तो उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होनी चाहिए.
मेरे को एक कोट याद आई, रसल पीटर्स बोलते हैं कि एवरी एंटरटेनर और एजुकेटर, मतलब वो टीचर्स और एंटरटेनर को सेम बोल रहा था. इट वाज लाइक एवरी एजुकेटर एंटरटेनर इज इन द क्लैप्स बिजनेस. तो तुम कुछ भी तुम्हें बोल दो कि हम एंटरटेनर्स बोलते हैं कि हम खुशी फैला रहे हैं, या एजुकेटर बोलते हैं कि हम नॉलेज फैला रहे हैं, सब बकवास है. तुम सब क्लैप्स बिजनेस में हो. जितनी ज़्यादा तालियाँ बजेगी उतना ज़्यादा तुम मोटिवेट होगे काम करने के लिए. तो तुम बस इस पर ध्यान दो कि तालियाँ कितनी बज रही, बाकी कुछ और मत देखो, क्योंकि तालियाँ बज रही मतलब तुम अच्छा काम कर रहे हो.
हाँ, मतलब अगर कुछ क्राफ्ट सीख के और ऑडियंस को नहीं इम्प्रेस करना है तो फिर तुम वो चीज अकेले में रिहर्स करो यार.
पहले कैसी रियलिटी थी मेरे को बताओ, कोटा फैक्ट्री में, मतलब कोटा की
हाँ, मतलब आई थिंक लोग ट्रेंड बनते हैं. मतलब जो अपन ने पिछले सवाल का जवाब दिया, जो तुमने नेपोटिज्म पे जो क्वेश्चन किया, ट्रेंड बनते हैं. मतलब कि ठीक है, उसका बेटा भी एक्टर, उसके ठीक है, तो वो ऐसा ही ट्रेंड कोटा में था कि हाँ मतलब कोटा से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं तो कोटा भेजो. तो सब लोग कोटा भेजने लग गए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको करनी भी नहीं है आईआईटी, ठीक है, वो लोग वहाँ बैठे रहते हैं क्योंकि वो ऐसी एज होती है वहाँ पे नहीं पता होता. मतलब उस एज पे किसी बच्चे को पता नहीं होता कि इसका फ्यूचर क्या होना है. उस लेवल पे क्लैरिटी नहीं होती है. तो सारी क्लैरिटी आती है कि अच्छा मैथ्स अच्छी है, आईआईटी कराओ ज़्यादा बेटर है, एमबीबीएस में तो सीट्स बहुत कम हैं, बहुत साल लग जाते हैं, तो वेस्ट करने का नहीं. अगर बच्चा दिमाग लगाएगा मैथ्स में तो शायद निकल जाएगा इसका आईआईटी, तो इंजीनियरिंग में कुछ हो जाएगा, तो इंजीनियरिंग में डालो, तो बहुत बच्चे होते थे, बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं, और वही कि एक ऑडियंस की तरह तुम बैठे हो, टीचर आएगा तुम्हें पढ़ाएगा, तुम ओ में हो, लिख रहे हो, कुछ टीचर की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस्ड हो, तो वैसी चीज़ें होती थी, बट बहुत डिफरेंट था जो अभी का है।
बट जैसे वो दिखाते हैं महेश्वरी बंसल, ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे ऐसे ही चलता है कि तुम,
वो तो इंडस्ट्री वाली चीज़ है कि ये बड़ा प्लेयर है, ये बड़ा प्लेयर है, इसने बहुत ज़्यादा मचाया है, इसके बच्चे ज़्यादा हैं, इसका रीच ज़्यादा है, इसका कैच ज़्यादा है, यहाँ पे अच्छे टीचर्स जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप समहाउ बड़ा हो जाएगा,
और उनका खौफ रहता है,
दे विल बी कमर्शियल, ऑफकोर्स उनका खौफ रहेगा ना, मतलब ये तो किसी भी, ये तो जंगलों में होता है, जंगलों में समबडी इज पावरफुल, उसका खौफ होगा, वो किंग होगा, सो इट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ, इसको नहीं बदल सकते तुम, ठीक है, अगर किसी ने अपना बनाया है रुतबा, तो यू विल, मतलब पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड बाय यू, योर पर्सनालिटी।
आप किधर पढ़ते थे?
मैं रेजोनेंस में था, कोटा रेजोनेंस।
रेजोनेंस कौन सी नंबर पे? 1, 2, 3, 4।
उस टाइम पे सेकंड आती थी, बंसल उस टाइम पे टॉप पे था, सो बंसल का, बंसल क्लासेस का कुछ ग्लिम्सेस हमने सीजन 2 में दिखाए हैं, जो जो टीचर होते हैं, जो जिनका जो जीतू भैया के टीचर होते हैं, जिनसे वो हेल्प लेने जाता है, सो उनको दिखाया, तो वो बंसल सर से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है वो बिट्स।
बंसल अभी एलन क्या है? एलन
अभी एलन है, एलन हैज लाइक, अभी एलन के सामने कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं ना, मतलब नेशनल लेवल पर उन्होंने किल कर दिया,
पूरा कोटा एलन का है,
पूरा इंडिया में है भाई, हर जगह,
मतलब कोटा तो लैंड वाइज उनका है, नॉट उन्होंने, हाँ
एलन इज महेश्वरी,
एलन इज काइंड ऑफ
महेश्वरी,
तो उनसे इंस्पायर्ड है कोटा फैक्ट्री में जो ब्रांडिंग है वो कहीं ना कहीं,
एलन
दे आर द किंग,
मतलब लैंड वाइज भी उनका,
दे आर द किंग, ऑफ कोर्स, मतलब व्हेन सबसे पहले तुम यही चीजें करते हो, वंस यू आर पावरफुल इन सम फील्ड, सो यू
एक्वायर लैंड,
यू वांट टू बिकम द किंग फर्स्ट।
ट्रू ट्रू। मैं इंदौर में जब एलन आया था, इंदौर में दो इंस्टीट्यूट थे, रैंकर्स पॉइंट एंड स्ट्रैटफोर्ड अकेडमी, आई थिंक स्ट्रैटफोर्ड ही नाम था, इफ आई एम रॉन्ग आई डोंट नो, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड से, बट एकदम सिटी के सेंटर में उनके दो इंस्टीट्यूट हैं, एंड वो पहले वो दोनों थे, और फिर एलन आया, एलन ने दोनों ले लिए, तो अब शाम को अगर इंदौर के सेंटर में आप जाते हो, पलासिया साइड वो एरिया है, गीता भवन पलासिया, वहाँ पे आप जाते हो तो ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म है एलन की, सात आठ बजे ऐसा लगता है सी ऑफ ग्रीन, मतलब सिर्फ ऐसा लगता है इंदौर शहर में और कोई नहीं रहता, सिर्फ ये ग्रीन कलर के बच्चे टी शर्ट में घूम रहे हैं, पूरा
पागल,
100, 200, 300 बच्चे एक चौराहे पे एकदम से ऐसे देखे, मैं ये क्या है, एंड सब पीछे वो एलन लिखा हुआ है।
हमारे टाइम पे एलन सिर्फ मतलब पीएमटी की तैयारी कराता था, एमबीबीएस के लिए तैयारियां कराता था, इट वॉज नॉट इन टू आई आई टी, Now it is everywhere.
आपको लगता है, because you are an IIT, आपको लगता है कि online पढ़ सकते हैं अच्छे?
नहीं,
difficult है?
पता नहीं, मुझे लगता है कि यार human interaction बहुत जरूरी है, मतलब इस face to face level का, एक अपन भी करते हैं ना online interviews, ठीक है वो हो जाते हैं, but उसमें मजा नहीं आता, जब तक ऐसे बैठ के बात ना हो तब तक वो थोड़ा difficult होता है, तो वो अभी के time पे पता नहीं मतलब कितना फिजिबल है, उस टाइम पे लग रहा था एक्चुअली जब लॉकडाउन वगैरह चीज़ें हो रखी थी, और उस टाइम पे लग रहा था कि हाँ ये एक बड़ी इंडस्ट्री होगी, बट मुझे लगता है कि टाइम है अभी उस लेवल पे टाइम है कि जब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो भी सारी फिल्मों की मीटिंग है वो सब ऑनलाइन होने लग जाएगी, बट नहीं है, एवरीबडी लाइक्स टू मीट यू,
यस,
एंड देन एक्सप्रेस कि अच्छा ये मेरी स्टोरी है ये, एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन जब होता है उतने अच्छे से कन्वे नहीं होती हैं चीज़ें,
वो तो मज़ा भी नहीं आता है मीटिंग पे,
तो एग्जैक्टली हाँ, तो वो जैसे ऐसा मीटिंग करने के लिए हो जाती है, तो वो घर पे बैठ के पढ़ाई बहुत डिसिप्लिन चाहिए यार, वो अगर तुम्हें ऑनलाइन ट्रेन होना है तो वो उस लेवल की समझदारी किसी बच्चे में ही होनी चाहिए कि हाँ मैं बैठ के जेन्युइनली पढ़ना चाहता हूँ, और एक घंटे में आई थिंक हम लोग सोशल लोग हैं, सबके साथ बैठ के जब तक वो कंपटीशन नहीं होगा, जब तक बैठ के पता नहीं चल रहा कि इसको समझ में आया उसको समझ में आया, वो वाइब नहीं आई तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि सबको समझ में आ चुका है मुझे नहीं आया है, तो मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो ये नहीं आएगा तो आई थिंक सम अमाउंट ऑफ दिस प्रेशर इज़ नीडेड इन आर सोसाइटी।
ओके, क्विक क्वेश्चन अगैन, स्मॉल टाउन से आने के फ़ायदे, कभी ऐसा लगा कि आपको ये मेरी स्ट्रेंथ है क्योंकि मैं शायद बॉम्बे में पला बड़ा नहीं हो, या कभी इनसे क्यों और लगा?
इनसिक्योर तो बहुत यार, इनसिक्योरिटी तो कूट कूट के भरी होती है खासकर खासकर स्मॉल टाउन न्यूज में तो इनसिक्योरिटी उनका फ्लेक्स होता है कि हम इनसिक्योर लोग हैं
क्यों इनसिक्योर लगता है आपको बॉम्बे में?
नहीं नहीं इनसिक्योर तो इनसिक्योरिटी तो नहीं है, ये पता नहीं कौन लोग हैं, मैं कितना अलग होऊंगा, बट हाँ विद टाइम यू बिकम कंफर्टेबल व्हेन यू नो पीपल अराउंड कि अच्छा हाँ ये इस मतलब इस तरह से बिलोंगिंग्स इसकी ये हैं, इसको इतना पता है या और मैं मेरी बिलोंगिंग्स ये हैं तो मैं इस तरह से हूँ. यू बिहेव थ्रू योर लाइक कैसे तुम आए हो, क्या तुमने जिया है, उसके हिसाब से तुम एक इंसान बनते हो. दैट्स हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो वो तुम्हें विद टाइम समझ में आता है, तो वो एक इनसिक्योरिटी जाती है, धीरे धीरे करके जाती है ना. जैसे मतलब पहले मैं हिंदी मीडियम से था, सो एक सडनली तुम दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हो तो तुम अपने आप इंग्लिश मीडियम वाले बंदे को भी हिंदी मीडियम में डाल दोगे तो ही विल फील और शी विल फील इनसिक्योर. ठीक है, अगर शहर के एक बंदे को आप तुम गांव में डाल दो, ही विल फील स्कैर्ड.
भाई क्या हो रहा है?
अगर शहर के बंदे को तुम जंगल के कबीलाज के बीच में डाल दोगे, ही विल फील और शी विल फील इनसिक्योर.
यस,
ठीक है. तो और वही कबीला को तुम यहाँ पे डाल दो, वहां पे भले ही वो किंग हो, बट यहाँ पे सडनली इज द एनवायरमेंट.
यस,
नया एनवायरमेंट हमेशा तुम्हें एक फील एक फीलिंग देता है, स्ट्रेंज फीलिंग देता है. We call it insecurity, जो अपने आप डेवलप होती है, तुम उस पर पाइल अप करते हो कि अच्छा मैं अलग हूँ इनसे, पता नहीं मैं ये बोल दूंगा तो इनको कैसा लगे. It's that thing. तुम कबीलाज में जाके सोचोगे कि यार मैंने ये बोल दिया तो ये पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे. सो उन चीज़ों से बचने के लिए यू बिकम यू पुट अ शील्ड इन फ्रंट ऑफ यू और उससे बचने के लिए. सो दैट्स कॉल्ड इनसिक्योरिटी. सो जब तुम स्मॉल टाउन से और बहुत सारे लोग स्मॉल टाउन से शहरों में आते हैं तो दे आर द लाइक द
हाँ आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी हिंदी मीडियम थी
कह सकते हो बचपन से वो फील कराया जाता है कि अरे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम और तुम्हारी बिलोंगिंग मतलब तुम पढ़ी हिंदी मीडियम में रहे हो तो अभी तुम कैसे एक दिन में जाके एक फैमिली मिली उनसे उनके सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं और इंग्लिश मीडियम में बात कर रहे हैं. यू बिकम एलियन टू देम एंड दे बिकम एलियन टू यू. हाँ, एंड प्रॉब्लम वहाँ होती है मतलब बिकमिंग स्ट्रेंज इज फाइन. लाइक प्रॉब्लम वहाँ होती है कि एवरीबडी इज लाइक इन द टीम ऑफ इंग्लिश मीडियम. योर पेरेंट्स जिनको अरे तो मुझे इंग्लिश मीडियम में डालो ना यार, अभी तुम उसकी टीम में कैसे हो गए? देखो उसको तो इंग्लिश भी बोलनी आती है कि सनी बोल भाई इंग्लिश कैसे इसको इंग्लिश की पोएम नहीं आती. अब your parents your family becomes like very looks very impressed with these guys, then you feel insecure ki ye kya hua. Are bhai maine thodi na apne aap ko hindi medium mein dala hai. When your team changes the thing, then you feel insecure, then you feel alone. Strange tak chalega jab to isliye to char ke group mein jate ho, then you are comfortable ki ye meri team hai, in charon ko english nahi aati bhai isliye you take your team together ki ha bhai abhi theek hai. But you go alone in that strange people, और वहाँ पर you see कि अरे nobody is with me, and your team also goes in that team, then तो it will feel, you'll feel alone.
Yeah.
And तो that is called insecurities.
And you feel Bollywood and film industry और जिस industry में उसमें बहुत ज़्यादा off screen English speaking का बहुत ज़्यादा culture है, तो वो कभी कभी off करता है. You know नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने बोला था एक बार कि उनको बड़ी problem हुई थी starting में, क्योंकि Bollywood में जब ऑफ कैमरा हो तब बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर है, बहुत ज़्यादा. मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि यार साउथ इंडियन जो एक्टर्स हैं, साउथ इंडियन जो सिनेमा है, वहाँ पे वो लोग बहुत प्राउड हैं और वो लोग सब उनकी लैंग्वेजेस में ही बात करते हैं ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन. बट स्पेसिफिकली बॉलीवुड में और हिंदी सिनेमा में ऐसा नहीं होता. यहाँ पे ऑफ स्क्रीन सब इंग्लिश में बातें करते हैं और ऑन स्क्रीन सब हिंदी में बातें करते हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी. थोड़ा ऑफ लगता था कि मैं मांगू नहीं मांगू चीजें करूँ कि नहीं करूँ.
अगेन ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है जहाँ पे इंग्लिश को बहुत उस तरीके से ट्रीट किया जाता है. इसका वही बोल रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज पे लोग जज किए जाते हैं, वो है. इट्स नॉट अबाउट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मैं बस वही समझाना चाह रहा हूँ. और बाकी कंट्रीज ने अपनी लैंग्वेज को बहुत बचा के रखा है और उन्होंने यूज़ किया उस लैंग्वेज को. लाइक इफ विल गो चाइना जापान, उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज में इंजीनियरिंग बुक्स हैं. सिर्फ इंडिया में बुक्स इंजीनियरिंग की इंग्लिश में,
हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम
इंग्लिश में है. वो कहीं अच्छा भी है बुरा भी है, बट बाकी सब कंट्रीज में, लाइक इफ यू गो टू एनी कंट्री, वहाँ पे इंजीनियरिंग बुक्स पढ़ोगे, वो लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं. वो लोग अपनी लैंग्वेज में बुक पढ़ते हैं. यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश को प्राइमरी प्रीमियम लैंग्वेज माना जाता है. उससे होती है इनसिक्योरिटीज, बहुत सारे लोग इनसिक्योरिटीज होती है, बट कोई समझदार प्लेयर समझ जाए कि ये कोई गेम नहीं है तो उनको नहीं होती प्रॉब्लम.
ओके, व्हाट इज अ स्ट्रेंथ? आपने बताया था कि ये इनसिक्योरिटी तो ठीक है अपन सबको आती है, स्मॉल टाउन से जो आते हैं, स्मॉल शहर से आते हैं, पर स्ट्रेंथ क्या, कोई फायदा लगा आपको ऐसे कि यार क्योंकि मैं
स्ट्रेंथ इज कि मैंने मैंने गांव भी देखे हैं, कस्बे भी देखे हैं, शहर भी देखे हैं, और सारे के सारे कल्चर्स मैंने देखे हैं. मुझे वो लगता है कि कई बार जो अर्बन है वो मिस आउट करते हैं वो कल्चर, ऐसा कुछ लाइफ में बहुत बड़ी चीज मिस नहीं कर रहे हैं वो.
नेचर से दूर है अर्बन क्राउड, इज दैट व्हाट यू मीन?
नो नो, नेचर से कोई दूर जा नहीं सकता. दे हैव नेचर अराउंड, दे हैव समुद्र उनके आसपास है, सो कोई किसी के आसपास कुछ और दूसरी चीज है, सो नेचर से वी कांट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस एंड those experience. I have both experience, urban or small town. They only have urban experiences. Very rare. उनको small town में जाके जरूरत जाने की जरूरत नहीं है, तो वो experience नहीं है उनको, तो उसका फायदा तुम उठा सकते हो when you are in your job, खासकर जहाँ तुम ऐसे जहाँ पे तुम एक public figure हो, वहाँ पे तुम उस experience का फायदा उठा सकते हो, जहाँ पे तुम एक actor हो, जहाँ पे तुम्हें worlds पता है, जहाँ पे तुम्हें space पता है, जहाँ पे तुम्हें characters तुमने at least देखे हैं, it will help. बट ऐसा नहीं है कि कोई अर्बन में पला बड़ा कोई एक्टर है वो गांव का रोल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसको थोड़ा जाके देखना पड़ेगा इफ़ ही wants टू प्ले इट ऑथेंटिकली, और इफ ही wants टू गिव सोल टू द कैरेक्टर ही माइट डू एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट. एंड फॉर मी, हाँ मैंने देखा है तो आई विल जस्ट गो ऑन द स्क्रिप्ट, की स्क्रिप्ट अगर सही है, उसमें सही लैंग्वेज है, सो उतना मुझे करना पड़ेगा. एंड कैरेक्टर्स आई हैव सीन, सो आई कुड टेल माई सेल्फ कि हाँ जो परफॉर्म हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं. आई कुड टेल माई सेल्फ कि यार हाँ ये अच्छा किया, ये ऐसा देखा है और ऐसे ही वो लोग बात करते हैं और ऐसा निकल के आ गया, ऐसा एग्जीक्यूट होगा, सो आई कैन बी लिटिल ओके कि हाँ चल आज का काम अच्छा हो गया. अदरवाइज आई विल बी इन डाउट कि यार ये मैंने लैंग्वेज पकड़ी है, ये मैंने बोला है, ये एक्सेंट ये करेक्ट है कि नहीं, सो आई विल बी इन दोज डाउट्स. सो उतना सा ही प्रॉब्लम होगा, और उस स्ट्रेंथ का फायदा उठा सकते हो कि तुम्हें थोड़ा सा, तुम थोड़े से एफिशिएंट हो बिकॉज यू हैव बोथ एंड लाइक ट्रिपल एक्सपीरियंस, गाँव कस्बा हाँ एक छोटी सिटी एंड बड़ी सिटी, सारे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे पास हैं.
यू नो मेरे लास्ट टू क्वेश्चन हैं, पर उससे पहले बताऊँ कि मुझे ऐसा लगता है, जिससे येस और नो यू टेल मी एग्री यू नो, जब मैं इंदौर में था और मैं आसपास, मैं छोटे छोटे गांव में भी जाता था, शहरों में भी जाता था, आसपास की बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, कभी बिजनेस की वजह से, कभी दोस्तों के साथ, कभी ऐसे ही ड्राइव पे, या तुम एक्सपीरियंस करते हो कभी कॉलेज से, कुछ भी करके अगर तुम ट्रिप एक्सपीरियंस करते हो और वो शहर गाँव छोटा शहर बड़ा शहर सब अगर तुम देखते रहते हो, आई थिंक तुम्हारे पास बहुत डाइवर्सिटी होती है लाइफ में. एंड नाउ दैट मैं आई इन मुंबई, और मुंबई में मैंने मेरी एक दुनिया बना ली है जहाँ पे सब आसपास मेरे टाइप के ही लोग हैं, मैं उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करता हूँ, उन सब की एक या दो ही रेस्टोरेंट्स होते हैं या क्लब्स होते हैं वो जहाँ पे जाते हैं, वैसी टाइप के लोगों से तुम मिलते हो, तो डाइवर्सिटी बहुत मिसिंग हो जाती है. सो आई फील एज यू ग्रो मोर इन लाइफ, और यहाँ जितना तुम अर्बन सिटीज़ में जाते हो तो डाइवर्सिटी मेरे को लगता है बहुत कम होती जाती है. लाइक लोग उल्टा बोलते हैं, लोग बोलते हैं मुंबई शहर में क्या डाइवर्सिटी है, हर जगह एक नई जगह का इंसान है, राइट? आई गेट इट कि अलग अलग शहर से इंसान है, अलग अलग टाइप के इंसान है, अलग अलग इनकम ग्रुप के इंसान है, पर वो सब भी एक तरीके का एक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. बट व्हेन यू आर इन अ स्मॉल टाउन और इन अ स्मॉल सिटी, स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट इंदौर, मतलब हम 15 दोस्त अगर घूम रहे हैं, हम 15 के अलग अलग कैरेक्टर हैं और वो साथ में घूम रहे हैं और वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, कोई ट्राई भी नहीं कर रहा एक दूसरे से बनने से, राइट? यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मैं इस ग्रुप में जा रहा हूँ तो मुझे इनके से फिटिंग करना पड़ेगा, कि मेरे को थोड़ा बनना, तो मेरी डाइवर्सिटी किल होते जा रही, तो मेरी लाइफ में जो मुझे लगता है कि दुनिया कैसी होती है वो कम होते जा रही, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो सब ऐसे ही सोचते हैं, यही चीजें खाते हैं, यही ब्रांड्स पे कपड़े पहनते हैं, यही जाते हैं. वेयर इज, जब मैं इंदौर में था, सेम इनकम ग्रुप के होने के बाद भी ना हम सबके कपड़े बनवाने का तरीका भी बहुत अलग था. कि कोई 1000 रुपये अगर है किसी के पास तो 1000 रुपये में कोई ब्रांड से लेके आता था, लेकिन कोई 1000 रुपये में बहुत तगड़ी टेलर मेड करता था, कोई 1000 रुपये में एक दूसरे शहर से उसके पापा कपड़ा लेके आते थे फिर वो बनाता था, कोई एक कपड़ा मार्केट में जाके उसकी एक ही दुकान है वहीं से लाइक सबका अलग एक तरीका. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस कपड़ा, पर इतनी डाइवर्सिटी और हर किसी का कैरेक्टर है, लैंग्वेज, एक्सेंट, बोलने का तरीका, किसी में मतलब यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं ऐसे कि जबरदस्ती एक ही ग्रुप में कोई बहुत चौड़ा घूम रहा है, मतलब सब थोड़े, अगर सब चौड़े हैं, सब चौड़े हैं, सब सीधे हैं तो सब सीधे ऐसे। जैसे वहां क्या होता है, मेरे ग्रुप में एक इंसान भले पतला सा लेकिन वो ऐसा है कि हाँ, चलते रहते किसी को बॉटल वॉटल मार देगा लाइक दैट। और उसी ग्रुप में, सेम ग्रुप में सेम आदमी बेस्ट फ्रेंड है जो कभी किसी मुंह नहीं खोलेगा, लड़ाई नहीं करेगा, गाली नहीं बकेगा। तो बहुत डाइवर्सिटी होती है,
ये बोल सकते हो।
ओके, लास्ट क्वेश्चन कि अब आपने ना, यू हैव मेड इट बिग, आप हर उस एक स्मॉल टाउन के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि जिसको कुछ करना है या आगे निकलना है, जो किसी ना किसी तरह से ये चाहता है कि मैं लाइफ में बड़ा कुछ काम करूं। आपने आईटी क्रैक कर लिया, वो इटसेल्फ बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। फिर उसके पास जाके पूरा यू टर्न लेके ड्रामेटिक्स ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर एक, आप एक बहुत छोटे से स्केचेस में टेक्निकली यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट किया और अब मेन स्ट्रीट मूवीज में आने लग गए। सब यू हैव डन इट ऑल राइट। और मतलब फ्रॉम अ, आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा अगर आपको आगे बहुत कुछ करना है एंड यू हैव ए जर्नी, पर बहुत सारे छोटे टाउन के जितने लोग हैं उनके लिए आप इंस्पिरेशन हो कि यार मुझे भी इतना कुछ करना है। सो व्हाट्स योर एडवाइस, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो गलतियाँ जो आपको लगती है जो छोटे टाउन वाले करते हैं स्मॉल टाउन से, या हर इंसान जो किसको कुछ बड़ा कुछ करना है, फॉरगेट स्मॉल टाउन बिग टाउन, फॉरगेट इट, जिसको कुछ बड़ा करना है, आपको लगता है यंग लोग क्या गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए अगर उन्हें कुछ बड़ा बनाना है लाइफ में? तो
आई थिंक मैं इसमें यूथ को कुछ बोलने के बजाय मैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको बोलना चाहूंगा कि हाँ, वो यूथ को कम डाइवर्ट करें। यूथ जो एस्पायर कर रहा है कुछ बनना, लेट हिम डू, उसको तुम सपोर्ट करो। और क्योंकि यूथ को समझ में नहीं आएगा, हमें जो लगता है ना, हम एज एक्सपीरियंस लोग कि हम इन्हें समझा देते हैं, हम इनको पहले, भाई हम तो तेरे को बता रहे हैं, हम तेरे को सही रास्ता दिखा रहे हैं, या तो तू हमारी गलती से सीख जा और या फिर तू खुद गलती करेगा। अरे नहीं भाई, तुम नहीं समझा सकते ये बात किसी को। वो बंदा गलती करेगा तो ही सीखेगा, तो ही वो कुछ जो वो एस्पायर कर रहा है तभी वो पहुंच पाएगा। और वो एज ऐसी होती है तुम नहीं समझ सकते हो ये सारी चीज़ें, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बड़ों से एडवाइस लेके। अगर वो लाइफ पाथ और ठीक है, अगर वो अपने फील्ड में टेक्निकली कुछ, मतलब कोचिंग एंड स्टूडेंट टीचर वाला अलग चीज़ होता है, बट एक एडवाइजर और एक स्टूडेंट, मतलब एडवाइजर वाला जो गेम है ना, वो मुझे कम समझ में आता है। वो मुझे लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तेरी बात आज सुन के भूल भी जाएगा। तेरे एक्सपीरियंस अलग थे, तुम कहाँ से एडवाइस करोगे यार उस एज को? वो एज बहुत रेबल एज होती है, वो करेगा जो उसको करना है, तो तुम्हारी एडवाइस वेस्ट है। वो उसको समझ में आ जाएगा, 3 साल बाद समझ में आ जाएगा कि ओह शिट, ये किसी ने बोला था यार ऐसा मत करना, बट वो उसके बिना उसको समझ में आएगा ही नहीं। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू गिव एडवाइस टू देम। एंड ऑफ कोर्स लाइक इफ वांट मी टू गिव एडवाइस टू यूथ हु आर एस्पायरिंग एक्टिंग, आई विल से यू आर बॉर्न इन अ वेरी गुड स्पेस। लाइक जो भी तुम्हारा एरा है, बहुत अच्छे एरा में तुम बॉर्न हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास, तुम्हें एक अलग से वीडियो कैमरा की जरूरत नहीं है, तुम्हें थिएटर्स की जरूरत नहीं है। सो इट्स वेरी गुड टाइम, बस बनाना चालू करो एंड यू विल लर्न विद टाइम।
वेल थैंक यू सो मच,
थैंक यू बड़ी,
ये एपिसोड बनाने के लिए आप इधर आए और पवाई से इतनी दूर आए, वो बहुत बड़ा काम है, एंड इतना टाइम दिया। इट वॉज अ प्लेजर होस्टिंग यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। Until the next episode, keep figuring out and don't forget to subscribe this channel and share this with at least one person. किसी एक इंसान के साथ share करो जिसकी life में इस episode या इस conversation के बाद एक positive change आएगा।